ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रह्मानुसार दिन से मिलना हुआ, यह हमारा भी सौभाग्य। सभी खुश हैं? कोई समस्या जीवन में? कुछ नहीं। ओके, चलो अच्छी बात है, समस्या नहीं है। जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती, वही सारे विश्व की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो उनमें से आप एक हो, क्योंकि आपके जीवन में समस्या नहीं है। जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, समस्या क्यों आती है, सारी बातों को लेते जाएंगे। समस्या आने का कारण हमारी एनर्जी। जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है, समस्या आ जाती है। जब एनर्जी बढ़ती है, समस्या खत्म हो जाती है। यह जीवन का एक मुख्य लॉ है, मुख्य नियम है। जब कभी भी हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, उस समय बस इतना ही ध्यान रखें कि मेरी ऊर्जा मानसिक रूप से कम हो चुकी है, उसे बढ़ाना है। अपने आप समस्या खत्म होती है। आपके जीवन में हर चीज आपकी एनर्जी से ही रिलेटेड, अट्रैक्शन से आती है। लास्ट टाइम भी हमने बात की, कपड़ों से लेकर, परिवार से लेकर, खाने पीने से लेकर, कहां से आ रहा है, जितनी ऊर्जा है उतना मिलता जा रहा है। हर स्थान की ऊर्जा अलग अलग है। दिल्ली की ऊर्जा अलग है, गाजियाबाद की अलग है, बॉम्बे की अलग है। मतलब आप उस स्थान में हैं, इसका कारण है आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी उससे ऊपर उठ जाए, आपका स्थान बदल जाए, आपका रहन सहन बदल जाए। ये तो प्राकृतिक लॉ है जो हमने लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था। अभी इस बार हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जी कैसे बढ़ती है। एनर्जी दो प्रकार की है, एक पास्ट लाइफ से हम यहाँ लेके आए, उसे हम भाग्य कहते हैं। कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिनके कारण सुंदर शरीर मिला, सुंदर मन बुद्धि, अच्छा परिवार, खाना पीना, एजुकेशन अच्छा मिला, समाज अच्छा मिला, भाग्य से लेके आए। लेकिन अभी इस समय में क्या कर सकते हैं, अगर उस भाग्य को और यूटिलाइज करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। ये हो गई पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी, यहाँ अगर अच्छी संगत है तो दूसरी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अच्छी एक्सरसाइज, खाना अच्छा, घूमना फिरना, अच्छी बातें सारी जो यहाँ करते हैं, उनसे एनर्जी और अच्छी होती है। देखिए, जो अमीर लोग होते हैं लौकिक में, वैसे तो अमीर हर कोई है, गरीब कोई नहीं है दुनिया में, अमीर ही है सिर्फ। ये दुनिया ही अमीरों की है, गरीबों की नहीं है। कोई ऊपर से है, कोई अंदर से है, कहना यही है। तो जो लौकिक में अमीर है, वह तो देखिए उनका रहन सहन, खान पान, सब कपड़े, सारा घूमना फिरना इतना रॉयल रहता है, उसके कारण वो सुकून पाते हैं जीवन में। किससे मिला? धन से सुख मिला, शरीर ठीक रहा, लेकिन वह भी टेम्पररी है। एक समय के बाद वह भी जैसे कम होता जाता है। तो जब यह ऊर्जा हम हमारे अंदर बढ़ाते हैं अच्छे विचारों से, राजयोग से, तो तो आप परिवर्तन पाएंगे कि जीवन कैसे बदलता जा रहा, आप अनुभव करते जाए। जब जिस समय हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, खुद को शरीर समझकर व्यवहार करते हैं, हमारी ऊर्जा घटती है हमेशा। यह एग्जाम्पल तो हम बहुत बार देते हैं सबको कि हम अपने आप को क्या समझकर दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं, यही हमारी जीवन है। भले हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अमीर हैं, सारी खूबियां हमारे अंदर हैं, इसका मतलब सामने वाला कम है या सिद्ध नहीं होता। ज्ञान और ज्ञान की समझ किसे कहा जाता है? जिसके पास दुनिया को समझने की समझ है वही सच्चा ज्ञानी है। मतलब जो खुद को समझ रहा है, दूसरों को हम नहीं समझ पा रहे, उनके कष्ट दुख सुख नहीं समझ पा रहे, और हम कहेंगे कि हमारे पास ज्ञान है, तो इसमें डाउट है। तो आज क्या हो रहा है कि दुनिया ऐसे ही चल रही, स्वयं को बस चला रहे हैं, ज्ञान में समझते जा रहे हैं, दूसरों का क्या हो रहा है, उनके साथ क्या चल रहा है, कोई परवाह नहीं। तो जब आप खुद का विचार करते करते दूसरों का विचार करना शुरू करते हैं, दूसरों के विचारों में बहना अलग बात है। कोई दुखी है तो हम भी दुखी हो जाए, ये गलत है, ये अज्ञान है। कोई दुखी है तो हम सोच सकते हैं उसको सुख किस प्रकार से हम दे सकते हैं। भौतिक रूप से तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम सकाश देके, अच्छी शुभ भावना उसके लिए क्रिएट करके, एक अच्छी एनर्जी हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे साथ दुनिया भी सुखी हो जाती है। लास्ट टाइम एक भाई से डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी साधु संत होके गए, महात्माएं होके गए, उन्हें प्रकृति क्यों सहयोग देती थी? पांच तत्व सहयोग देते थे, आत्माएं सहयोग देते थे, कारण एक ही है। वह सभी यही कहते थे कि सारा वर्ल्ड ही मेरा एक घर है। ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये वहां कोई धारणा ही नहीं, ये सारा विश्व मेरा घर है और सभी मेरे भाई बहन, सभी मेरे घर वाले हैं, एक ही घर। जब यह भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है तो आप महसूस करेंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको सहयोग मिलना ही मिलना है। सहयोग ना मिले ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी धारणा आपके लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए। यह सारे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इस एक धारणा से आप पाएंगे आपके अंदर बदल, परिवर्तन। जो लौकिक वस्तुएं भी है ना, वो भी आपको सहयोग देंगी। कैसे सहयोग देंगी? अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, किचन में सब्जी काट रहे हैं, और आपकी धारणा है शुरू से सारा विश्व मेरा घर है, छुरी से अगर आपका हाथ कटने वाला है ना, तो छुरी आपका हाथ कटने नहीं दे। प्रकृति कैसे सहयोग देती आपको बताते हैं। जब बहुत वर्षा हो रही है, आपको कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट है, विश्व कल्याण का कार्य है, वर्षा आपके लिए रुक जाएगी, थम जाएगी, क्योंकि आपकी धारणा है ये सारा वर्ल्ड मेरा एक घर है, मेरे पिता का घर है। उसके कारण धारणा बदल गई तो दृष्टिकोण अपने आप बदल जाता है। जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो सामने वाले का, प्रकृति से लेके हर बात का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब महसूस करेंगे जो फूल पत्ते हैं, वह भी आपसे जैसे कि बात करेंगे, अब उनकी भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। आत्मिक स्थिति की यही भावना है, मैं आत्मा हूँ तो ये सारा संसार मेरा सहयोगी है, मैं और मैं उनका सहयोगी हूँ, ये धारणा है आत्मिक स्थिति की। तो आत्मिक स्थिति में आना ही मना विश्व को अपना बनाना। तो ये धारणा अगर हम पक्की करते हैं तो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक समान। जब तक ये भेद है हमारे जीवन में अपना और पराये का, तब तक दुख है, इतना पक्का है, हम दुख से नहीं छूट सकते। अपना और पराया दो चीज, हर चीज अपनी है। किसी ने बहुत खूब कहा है ना कि जियो तो ऐसे जियो कि सब कुछ मेरा है, और मरो तो ऐसे मरो कि कुछ भी मेरा नहीं। मना जब जी रहे हैं तो सब अपना है, और शरीर छोड़ रहे तो सब पराया है, मेरा नहीं। तो इस धारणा से हमें बहुत सुख मिलता है। आपको दुख कहाँ से मिलता है पता है? अपनों से ही मिलता है। जो आपकी, हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हर चीज की बात, जो अपनी चीजें हैं वही हमें दुख देती है। आज ये घड़ी है हाथ में, अगर ये कल को खो जाती है और हमारा मन इसमें अटका हुआ है तो इस घड़ी ने क्या किया? दुख दिया। मोबाइल है, खो जाता है तो मोबाइल ने दुख दिया। तो जितनी अपनी चीजें हैं, अटैचमेंट्स है, अगर आपकी अटैचमेंट है उन सभी से, आपका लगाव है, तो आपको दुख पक्का है, आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर भी अपना मानेंगे तो शरीर भी दुख देने वाला मेरा। मतलब इस दुनिया में ऐसी कंडीशन है, एंड में ऐसी कंडीशन है, लॉ है कि मेरा कुछ नहीं। इस लॉ को अगर आप धारण करते हैं तो सब कुछ आपका हो जाएगा और आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर मेरा कुछ है, कुछ है, यह धारणा हमारे अंदर है, तो जो है वो भी आपको सुख नहीं देगा आपका, ये पक्का है। तो ये धारणा पक्की कीजिए कि मेरा कुछ नहीं, क्योंकि अपना ही दुख देता है, क्योंकि अटैचमेंट होती, अपने दुख नहीं देते, हमारे जो अटैचमेंट है उस व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, वह दुख देती है। तो ये धारणा पक्की कीजिए, जब मेरा कुछ नहीं कुछ भी आया कुछ भी गया फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं ना सभी मुसाफिर हैं, इस मुसाफिरी में किसी को राजा का पद मिला है, किसी को कोई और मिला है, लेकिन मुसाफिरी चल रही है। राजा भी कल को राजा के पद से उतरने वाला है, और जो कोई और है वो राजा के पद पर चढ़ने वाला है। इतना भी ध्यान रखते हैं, ये लॉ है कि जो आया है वो जाने वाला है। कोई भी चीज हो हम रोक नहीं सकते, हम खुद को ही नहीं रोक सकते, खुद ही आए हैं तो एक दिन जाने वाले हैं, तो दूसरी बातें तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो जितनी अटैचमेंट, मेरापन खत्म होगा उतना सुख मिलेगा। मेरापन दुख की एक ही वजह है, मैं और मेरापन। ये मैं शुद्ध हो जाता है आत्मा वाला, और मेरा परमात्मा बन जाता है, तो सुख ही सुख मिल जाए। लेकिन मैं और मेरा अगर अशुद्ध है तो दुख पक्का है। आप हर वक्त चेक कीजिए, कभी आज शाम को या कभी जब समय मिले शांति में बैठ के चेक कीजिए कि आपका क्या क्या है। एक बार लिस्ट निकाल दीजिए, एक बार आपको लिस्ट पक्की होगी कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो उसी समय ये इस बात को याद कीजिए कि ये सब जाने वाला है, आपकी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी उन सभी चीजों से। क्योंकि लिस्ट बन गई, संकल्प किया कि जो आया है जाने वाला है। कितने भी अच्छे गुण हो एक दिन गुण भी खत्म होने वाले, कितना भी ज्ञान हो एक दिन खत्म होने वाला। साकार वतन का लॉ ही है, जो है वो अंत में जाने ही वाला है। तो आज इसे हम एक धारणा करेंगे कि मेरा कुछ नहीं, अगर अभी भी कुछ मेरा बचा हुआ है। देखिए होता क्या है, हम जिसको अपना समझते हैं वो शुद्ध अपना नहीं होता, अशुद्ध अपना होता है। हमें क्यों जरूरत है उनकी? कारण एक ही है, हम उस चीज के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस स्थान के बिना, उस पदार्थ के बिना हम नहीं रह सकते। इसलिए हम कहते हैं ये मेरा है, हमें जरूरत है उसकी। तो ये शुद्ध अटैचमेंट, तो जब निकल जाएगी अब देखिए जीवन कितने सुखी होगी, बहुत सुख में चलेंगे, इतना सुख कि कुछ भी नहीं। इसलिए हम कभी कभी क्लास में कहते हैं कि आपके पास भर सब कुछ हो, रहे और इससे भी ज्यादा रहे, बढ़ोतरी होती जाए, आपका तन मन धन सब अच्छा होता जाए, बट यहां से हमेशा अपने को फकीर ही रखना। क्यों रखना फकीर? क्योंकि फकीर के पास फिक्र करने के लिए और फकुर करने के लिए कुछ नहीं होता। फकीर का अपना ऐसा कुछ होता नहीं कि जिसके ऊपर वो फिक्र करे या फकुर करे, कुछ नहीं होता। जो आया लिया, जितने समय रहना था उसके साथ रहा, चला गया। हर बात आती है जाती है, इस बीच में अगर किस बात को हम पकड़ के रखते हैं तो बहुत बड़ी गलती ये होती है कि आगे आने वाली जो बड़ी बात है इसको जब तक नहीं छोड़ते तब तक वो दूसरी वाली नहीं आ सकती। तो जो हमने पकड़ के रखा है, कोई भी चीज है, अगर हमने धन पकड़ के रखा है और हम सोच रहे धन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि धन को वेस्ट करना है, हम वेस्ट करने की बात नहीं कर रहे। अब जी लीजिए जितना भी आपके पास है, सुकून से खुशी से उस धन को यूटिलाइज कीजिए, जी लीजिए। लेकिन उस धन के पीछे बार बार सोचना और सोचकर अपने आप को मारना, माना आगे जो बड़ा धन आने वाला है उससे भी ज्यादा इसको होल्ड किया हमने, इससे हम जी नहीं पा रहे, तो आने वाला है उसको भी हमने रोक के रखा है। क्योंकि ये जाएगा तब वो आएगा, एक समय में एक ही चीज रहती है। शरीर को हमने रोक के रखा है, शरीर को रोक के मैंने कैसे रखा है, अपने आप को फ्री कीजिए, अंदर से अपने आप को फ्री कीजिए, बाउंड नहीं रखिए, बंधा हुआ। बीमारी है, पकड़ के रखी है तो जाने वाली है, अगर यहां से हम छोड़ देते बीमारी को तो बीमारी के बाद जो शरीर की हेल्थ है वो तो रुकी है आने के लिए। दुनिया में कोई भी बात यहां रुकती नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, इस दुनिया का दुनिया की सबसे बड़ी बात है चेंज, हर सेकेंड चेंज। दिस इज एक ही बात कांस्टेंट है इस दुनिया में, वो है चेंज, वो स्थिर है, बदलाव ही स्थिर है, बाकी स्थिरता कभी स्थिर नहीं हो सकती। आज इस सेकेंड में हम बहुत ऊंचे हैं, अगले सेकेंड में नीचे जा सकते हैं, लेकिन जब ऊपर उठते हैं तो आंखों में तेज ना बढ़े, छाती ना फूले, कहने शब्द ना बदले और नीचे गिरते हैं तो भी आंखें न झुके, सिर न झुके, दुख में आंखें न रोए। समानता, हर बात में समान। अगर किसी बात को हम अच्छी बात को बहुत अलग एहसास से कह रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं, इसलिए अलग एहसास से कह रहे हैं, माना वो बात मिलने का सूक्ष्म अहंकार हमारे पास क्रिएट हो गया। और किसी ऐसी बात को जो दुख भरी है दुनिया के लिए, उसको थोड़े झुकी आवाज में कह रहे, दबी आवाज में कह रहे, माना हम झुक गए। समानता, जो भी व्यक्ति जो भी आत्मा समानता में चलती है सारी प्राप्तियां पा लेती है। अपने क्लास में कहानी भी सुनी होगी, फिर इसे दोहरा देते हैं आपके सबके लिए। प्रकृति भगवान परमात्मा बाबा कैसे देता है, ये नियम प्रकृति का कैसे चल रहा है। एक किसान था, उसके पास बहुत अच्छा एक बैल था, हट्टा कट्टा, उससे ही खेती करता था। गांव के सभी लोग उन्हें बोलते थे कि कितना अच्छा बैल है आपका, कितनी अच्छी खेती हो रही है, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब मिल रहा है। जब किसान को गांव के लोग बोलते थे अच्छी बातें, तारीफ करते थे, फिर भी वो स्टेबल रहता था, खुशी में उछलता नहीं था। एक दिन बैल मर गया किसी कारणवश, तो वही गांव के लोग उनके पास आए और बोलने लगे, कितना बुरा हो आपके साथ, एक ही बैल था, अभी आपका क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी किसान यहां से स्थिर रहा, कोई विचार नहीं, उनकी बातें बस सुनी, अंदर नहीं ली, ना अच्छा ली, अच्छाई ली ना बुराई ली, स्थिर रहा। कुछ दिन के बाद जंगल से घोड़ा आ गया, जंगली घोड़ा उनके यहां आ गया, उन्होंने उसे पकड़ लिया, मिल गया, उससे खेती होने लगी। देखिए, तो गांव वाले लोग भी बोलने लगे फिर से आकर, क्या आपकी तकदीर खुल गई, बैल तो गया लेकिन इतना अच्छा घोड़ा मिल गया आपको जंगली, अभी तो और तेजी से काम होंगे। फिर भी किसान स्थिर है। कुछ दिन के बाद वो घोड़ा भी जंगल में चला गया वापस। फिर से गांव वाले आए, बोलने लगे कितना बुरा हो आपके साथ, अभी क्या होगा, बनी तकदीर भी बिगड़ गई आपकी। फिर भी किसान स्थिर है। कुछ दिन के बाद वही घोड़ा 10 घोड़ों को लेके आया, देखिए कैसे चल रहा है, 10 घोड़ों को लेके आया। फिर गांव वाले आए, बोलने लगे आपकी तो किस्मत उससे भी ज्यादा चमकने लगी। फिर भी किसान स्थिर है। कुछ दिन के बाद खेती करते करते एक दिन उनका बच्चा था 24-25 साल का जवान, हल चलाते चलाते घोड़े ने लात मार दी और बच्चे का पाँव टांग टूट गई, मतलब फ्रैक्चर हो गया। फिर से किसान गांव वाले आके किसान को बोलने लगे कि जो मिला है आपका एक ही बच्चा है, उसको भी इतना बड़ा नुकसान पहुंच गया, क्या हो रहा है आपके साथ। फिर भी किसान स्थिर है। कुछ दिन के बाद देश को जवानों की आवश्यकता थी, मिलिट्री आई, उस गांव में जितने जवान थे उनको पकड़ के लेके, इनका बच्चा मतलब कहना यही है, हर हालत में, हर सिचुएशन में अगर आप स्थिर रहते हैं, सिचुएशन आपके ही साइड में, आपके अगेंस्ट यहां कुछ नहीं हो रहा है, हमारी गलत फहमी है हमारे विरुद्ध कोई कुछ कर रहा है, नहीं, आपकी समझ ही आपके विरुद्ध अच्छा या बुरा कर रही है और कुछ नहीं कर रही, आपकी समझ ही। समझेंगे तो किसी किसी के लिए आपने देखा होगा जहर भी दवाई बन जाता है और किसी किसी के लिए अमृत भी जहर बन जाता है। समझ, छुरी है, सब्जी काटनी है या अपने आप को काटना है, हमारे हाथ में। रस्सी है, पानी निकालना है रस्सी से या फांसी लगानी है, अपनी समझ के ऊपर है, तो सब कुछ समझ के ऊपर। हर सिचुएशन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी थॉट नहीं है, आप अनुभव करेंगे सारी सिचुएशन आप ही के साइड में चलती है। सामने वाला कितना भी, अपोजिशन करने वाला कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आप स्थिर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। अपने बुद्ध की कहानी भी सुनी हो, बुद्ध जी एक बाजार से जा रहे थे, तो थोड़े समय के बाद चलते चलते सारे लोग दौड़ के आ गए, मतलब पीछे से आगे से दौड़ के आए, और बुद्ध जी को भी बोलने लगे कि भागो, एक पागल हाथी आ रहा है, आपको भी कुचल देगा, सारे बाजार की पूरी, मतलब कहेंगे कि सब डिस्ट्रॉय कर दिया सारे बाजार को। तो बुद्ध जी कुछ नहीं सोचा, चलते रहे, चलते रहे, चलते चलते सामने हाथी आ गया, लोग बोल रहे थे कि भागो भागो, वो स्थिर थे। बस हाथी सामने आने के बाद बस हाथ दिया, राइट हैंड, हाथी जगह पर रुक गया। आपकी स्थिरता
विश्व को स्थिर कर देती है। यह इससे सिद्ध हो जाता है। ऐसे नहीं कि बुद्ध जी ही महापुरुष होके गए, हम नहीं कर सकते, ये गलत फहमी है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपकी चाहना आपके संकल्प। इसलिए हम कहेंगे कि इस दुनिया में दुख नहीं है, हर परिस्थिति आपके फेवर में है। कोई कहता है इस क्षेत्र में मैं असफल हुआ, अगर आप असफलता को स्वीकार करते हैं तो वही असफलता आपको कितनी बड़ी सफलता दिलाएगी कह नहीं सकते, क्योंकि आपने स्वीकार किया परिस्थिति को। तो कौन सी असफलता के पीछे, कौन सी परिस्थिति के पीछे, कौन सी ऊंची स्थिति, ऊंची सफलता छिपी हुई है कह नहीं सकते। इसलिए हर परिस्थिति में राजी रहना है। अब करके देखिए, हर परिस्थिति में राजी रहना, यही जीवन है। बाकी देखिए, जो हो रहा है उसे ना आप बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं, ना ऊपर वाला बदल सकता है, क्योंकि वो तो ड्रामानुसार हर किसी के कर्मों अनुसार होता जा रहा है। इस दौरान हमें मिलेगी ताकत, मिलेगी समझ इस सभी को चलाने के लिए। तो कहना यही है कि पहली बात, अपनी परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। जब तक अपने आप को और अपनी परिस्थिति को, अपने घर वालों को, अपने आसपास के समाज वालों को, देश को, विश्व को कोसते रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, तब तक शांति नहीं उपलब्ध हो सकती। मुश्किल है, सबको स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। अगर कोई हमें रिजेक्ट करता है, कैसे लगता है, हमें रिजेक्ट करता है, चेक कीजिए। आजकल तो साइंस की मशीन्स आ चुकी हैं, साइंस की मशीन्स, जिससे पता चलता है अगर आपने इस फूल को गाली दी, कुछ बुरा बोला, और उस फूल को अच्छा बोला, दोनों को अगर मशीन से टेस्ट किया, वो मुरझाएगा, वो और खिलेगा। मन से, ऊपर से भी नहीं गाली दी, मन से ही गाली दी। दो दिन पहले ही एक एक्सपेरिमेंट किया, पानी लिया, पानी के ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोले गए, भाई जी ने ही बोला था, भाई जी को ही कहा था, और जब उसको टेस्ट किया गया तो वो इतना नेगेटिव हुआ था कि मशीन पूरी ऑपोजिट दिखा रही, 100% नेगेटिविटी। और उसी पानी को प्यार के शब्द बोले, फिर से वो पॉजिटिव हो गए तुरंत। अब सोचिए, पानी के साथ ये हालत हो रही, हम खुद को, दुनिया को, किसी भी बात को कितना बोलते हैं। इसलिए रिजेक्शन, हम कहेंगे दुनिया में सबसे बड़ा पाप है रिजेक्शन। किसी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को रिजेक्ट करना सबसे बड़ा पाप है। आपको पसंद नहीं है, मत लो। आप भोजन की थाली में कोई पदार्थ है, आप नहीं खाते, आपको एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, इसलिए वो गलत है, ये ठीक नहीं, ये हमारा दृष्टिकोण। जो चीज हमारे हिसाब से अच्छी नहीं है, वो किसी और के हिसाब से उसके लिए अच्छी है। हम अपने हिसाब से दुनिया का हिसाब नहीं लगा सकते। अगर अपने हिसाब से दुनिया का हिसाब लगाते रहेंगे तो एक दिन हमारा ही हिसाब किताब हो जाएगा, दुनिया से, परमात्मा से। तो हमारा हिसाब अलग है, दुनिया का, हर आत्मा का हिसाब अलग है, प्रकृति का हिसाब अलग है, और उसका हिसाब अलग। हर किसी की धारणाएं अपनी अपनी है। तो हमें जो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो बुरा है, ये गलत है, ये गलत है। कोई भी चीज है, किसी चीज की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, किसी बात के गुण ही ऐसे हैं जो अच्छे नहीं। ये हमें लग रहा है अच्छा नहीं। गाली देने वाला है उसको गाली कभी बुरी नहीं लगती, देने के वक्त अच्छी ही लगती है। बस जो सुनने वाला है उसको बुरी लगती है। अगर सुनने वाला अपना एटीट्यूड चेंज करे तो गाली दे या स्तुति करे, एटीट्यूड एक समान रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब तक हमें फर्क पड़ रहा है दुनिया की किसी भी बात से, तब तक हम दुख में जाएंगे। जिस दिन फर्क पड़ना बंद हो जाए दुनिया की किसी भी बात का सुख मिलेगा, क्योंकि फर्क पड़ना न पड़ना हमारे ऊपर है, हमारी धारणाओं के ऊपर है, हमारे खान पान की धारणा है। इसका मतलब लोग गलत खा रहे हैं, ये गलत बात है, वो उनका काम कर रहा है। नॉनवेज है हमारा, वेज है, प्योर वेजिटेरियन हम खा रहे हैं। हम हमारे खाने को श्रेष्ठ बोल रहे हैं तो दूसरा खाना कनिष्ठ होता है, ये गलत है। वॉट एवर इट विल बी, हम नहीं बोल रहे कि वो खाना है, जिसको ज्ञान है वो नहीं खाएगा, वो जिसको ज्ञान है वो उसकी मर्जी से खाएगा, पर वो गलत है ये कहना हमारा एटीट्यूड गलत होता है। मतलब जो भी चीज है उसको हम एक्सेप्ट करते जाते हैं। दुनिया की किसी भी बात को आप महसूस करेंगे कि हर जगह से आपको सिर्फ सुख मिल रहा है, सुख ही मिल रहा। पहली धारणा देखिए, जब भी हम बच्चों को, छोटा सा एग्जांपल याद आया, बच्चों को मोबाइल देते हैं, पहला सोचते हैं कि कुछ गलत ना करें। अभी हमने सोच ही यही रखी है कि कुछ गलत ना करें, तो थोड़ी सही करने वाला है कोई, गलत ही करेगा। हर बात हमारे सोच के ऊपर, हमारे समझ के ऊपर है। जिनके लिए शराब जानलेवा है वो उनके लिए है, हम कह नहीं रहे कि वो पीना है। हम सच झूठ सार असार उसको थोड़ा समझ रहे हैं। तो जिनके लिए जो चीज खतरनाक है दूसरों के लिए वो चीज औषधि, ये पाया गया है अभी तक। तो इससे सिद्ध होता है गलत कुछ नहीं, बस एक एटीट्यूड बदल जाए कि सब सही है, जीवन सही ट्रैक पर आता है, अपने आप सही ट्रैक पर आता है। अगर एक भी बात के लिए हमारे मन में ये संकल्प है कि गलत है किसी भी बात के, फिर भोजन की थाली में जो पदार्थ आपको पसंद नहीं है साइड में रख दीजिए, बोल दीजिए मुझे नहीं खाना ये अच्छा नहीं है, कहना अच्छा नहीं। हर चीज अच्छी है, हर व्यक्ति अच्छा है, किसी को दिल से नहीं लगता कि मैं बुरा बनूं या बुरा करूं, किसी का नुकसान करूं। हर किसी में अच्छा ही है, बस वो छिपी हुई है, वो देखने की नजर हमारे पास चाहिए। तो धारणा क्या करेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे, सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे। होगा क्या आपको बताते हैं, शुरुआत आपसे करेंगे हम। जिस समय आप संकल्प करेंगे मैं जो हूं, जैसा हूं या जैसी हूं, बहुत अच्छी, आपने क्या किया, अपने आप को स्वीकार किया। भले आपके पास लौकिक हम लौकिक टैलेंट नहीं होगा, लौकिक सुंदरता नहीं होगी, लौकिक अमीरी नहीं होगी, लौकिक आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा समाज के साथ, इसका मतलब आप कम हो यह नहीं है। आपके पास कुछ बात नहीं है इससे आप कम नहीं होते, या फिर आपके पास कुछ बात है इससे आप ज्यादा नहीं होते। हर किसी की सुंदरता, हर किसी की इंटेलिजेंसी, हर किसी का धन अपने पास, और मैं अपनी जगह हूं, मेरा मेरे पास है। तो सबसे बड़ी बात खुद को स्वीकार करेंगे, खुद को स्वीकार करेंगे, किसी भी हालत में खुद को रिजेक्ट नहीं करेंगे। खुद को रिजेक्ट करना भी सबसे बड़ा पाप है। दुनिया को तो हम स्वीकार कर रहे हैं, खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं। आज देखिए कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन कहते हैं। घर में ऐसी परिस्थिति चल रही है समाज में, घर में माता पिता को खाना नहीं दे रहे और मंदिर में भंडारा कर रहे हैं, रास्ते पर जो लोग मिल रहे हैं उनको खाना दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, ये कहां का न्याय और कहां की पुण्य की बात है। पहले ईश्वर ने हमें जो दिया है उसे संभालना हम सीख लेते। हमें क्या दिया है? हम खुद और हमारा परिवार, माता पिता, सारे परिवार, सबसे प्यार से रहना। उसके बाद फिर जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, जिनके संबंध संपर्क में है, उनसे प्यार से रहना। ये होने के बाद हम सोच सकते हैं कि अभी विश्व का कैसे करें, कोई दिख रहा है भूखा है प्यासा है, कैसे खाना खिला। लेकिन घर में खाने की प्रॉब्लम है, मना है सब कुछ लेकिन दे नहीं रहे और बाहर दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये न्याय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, खुद को स्वीकार करें। खुद को हम बहुत मार रहे हैं, खुद को पीट रहे हैं, खुद को अंदर से, खुद में हम बहुत कमियां निकाल रहे हैं। दूसरों को तो स्वीकार करते हैं हम बहुत अच्छे से, आप कितने अच्छे हो, अच्छे नहीं होंगे तो भी हम बोलेंगे आप कितने अच्छे हो, और खुद इतने अच्छे हैं हम। हर इंसान, हर आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसकी संतान है, हम सब उसके संतान है, कोई यहां रॉन्ग नहीं है, हर कोई सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले खुद को स्वीकार कर लीजिए। जिस समय आप खुद को स्वीकार करेंगे, मैं जो हूं, जैसी हूं, उसकी हूं और राइट हूं क्योंकि उसकी हूं, आप अनुभव करेंगे आपका परिवार, आपका समाज, सारा विश्व, प्रकृति आपको स्वीकार करेगी, सहयोग देगी। जब तक खुद को खुद सहयोग नहीं देते, तब तक खुदा भी हमको सहयोग नहीं दे सकता। खुद को सहयोग देना पड़ेगा। खुद को सहयोग देना माना एक्सेप्ट करना, खुद के अंदर कोई भी गलतियां नहीं निकाली, कोई भी गलतियां होगी करेक्ट करने का प्रयास कीजिए, लेकिन बोलिए नहीं। जब कोई और है गलती करता है, आपके पास आता है कि मुझसे ये गलती हो गई, हम कितने प्यार से समझाते हैं उसको कि कोई बात नहीं, अगली बार नहीं होगी, हम प्रयास करेंगे अगली बार सब कुछ ठीक होगा। इतना प्यार से अगर हम खुद को समझाएं तो खुद को कभी नहीं समझाते, खुद को कोसते रहते हैं कि तूने ऐसे कैसे किया, तेरे से ऐसे कैसे हो गया। हर बार जब भी कुछ हो जाता है, एक छोटी धारणा देते हैं आपको, ट्राई करके देखिए, जब कभी भी आपसे इसका उल्टा एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी है मत उठाइए। आपसे जब भी कोई गलती हो जाती है, इतना याद रखिए इसमें भी कोई कल्याण है, ये पहला संकल्प उठाएंगे। गलती होने के बाद आपको लगा कि यहां मिस्टेक हो गई, पहला ही संकल्प कीजिए इसमें भी कुछ कल्याण होगा 100%। आप देखेंगे आपकी गलती आपके और दूसरों के कल्याण में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। आपने समझ लिया कि कल्याण के लिए ही हुआ है। इससे क्या होता है, जो हुआ पहली बात तो उसकी गिल्टी नहीं फील करते, अपने को कोसते नहीं, दूसरी बात गलती को स्वीकार करने के कारण अच्छी ऊर्जा पैदा होती है और वही अच्छी ऊर्जा उस गलती को अच्छाई में कन्वर्ट कर देती है। कभी भी आपसे कोई गलत कर्म हो जाता है, जानबूझ के कोई करना नहीं चाहता, आज दुनिया में एक भी इंसान नहीं जिसका मन हो कि जानबूझ के गलतियां करूं, किसी को दुख दूं, पाप कर्म विकर्म करूं जानबूझ के, कोई नहीं करेगा। हम जिन्हें टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, हम कहते हैं उनके मन में जितना रहम है ना उतना किसी के मन में नहीं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। देखिए 5 बार नमाज पढ़ने वाला कट्टर है, अल्लाह को याद करते हैं। देखिए जो भगवान को याद करता है उसके मन में रहम ना हो ये हो नहीं सकता, बट वो पार्ट के वश है, उनसे जो कर्म होने हैं उनके वश होने के कारण उनसे वो कर्म होते जा रहे, ड्रामा में लोड है उसके कारण उनसे वो कर्म होते जा रहे। तो दुनिया में ऐसी एक भी आत्मा नहीं जिसको सच्चे दिल से लगता हो कि मैं गलती करूं। तो पहली बार हमसे कोई गलती होती है तो खुद को समझाइए, कोसिए नहीं, खुद को समझाइए। आपने एक्सेप्ट किया, आप ऊपर उठते जाए। जिस गलती के लिए आप गिल्टी फील करते हैं वह संस्कार कड़ा होता है, वह गलतियां और भी बढ़ती जाती। जिस गलती के लिए आप गिल्टी फील करते हैं वह गलतियां और बढ़ती जाती हैं, और जिस गलती के लिए आपने स्वीकार किया कि हो गई गलती, अगली बार प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, अच्छे से करेंगे, उस समय वह गलतियां खत्म होना शुरू हो जाता है। जो भी आपका संस्कार होगा आपको दुख दे रहा है, उस संस्कार के लिए अपने को गिल्टी मत कराइए। गिल्टी कराने से संस्कार कड़ा हो जाता है, और गिल्टी नहीं की, परमात्मा के ऊपर, बाबा के ऊपर छोड़ दिया कि तेरी मर्जी, जो कुछ हुआ तू देख ले। आप अनुभव करेंगे कि वो गलतियां कम होती जाएंगी, एक दिन वो संस्कार खत्म होता जाएगा। तो पहले तो अपने को स्वीकार किया हर हालत में। दूसरा, आप जिस सिचुएशन में हो, तन मन धन समाज परिवार सारे सिचुएशन में हो, तो सबसे पहला आपके तन को स्वीकार कीजिए। तन मतलब बार बार ये नहीं कहिए कि पता नहीं मुझे ऐसा शरीर क्यों मिला है। अगर बीमार भी पड़ते होंगे कभी कभी, बार बार कुछ होता होगा, शरीर से ठीक से कार्य नहीं होते होंगे, शरीर में कोई संस्कार होंगे छिपे हुए, फिर भी अपने को एक्सेप्ट कीजिए और शरीर को एक्सेप्ट कीजिए। उससे क्या होता है, आपके हाथ से अगर गलत कर्म हो रहा है, किसी को मार पड़ रही है, गलत कर्म हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो जब आप स्वीकार करते हैं तो वहां भी एक एनर्जी है, हाथ हाथ नहीं है, हाथ तो एक ऊर्जा है। तो आपने क्या किया, एनर्जी को स्वीकार किया। जब एनर्जी को स्वीकार करते हैं, किसी को भी स्वीकार करते हैं, तो आपसे पॉजिटिव ऊर्जा उसमें चली जाती, उसको ताकत मिलती है। कोई भी गलती कब करता है, जब उसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है अच्छा करने की। तो हाथ से गलती क्यों होगी, क्योंकि हाथ कर्म करते करते निगेटिव, उसकी ताकत खत्म हो गई, उसकी आदत बन गई कि वो कर्म कर ले, उसको ताकत चाहिए। जब आप उसे स्वीकार करेंगे, ठीक है अगली बार हम आपसे बहुत अच्छा कर्म कराएंगे, आप भी अच्छा कर्म करेंगे, आप महसूस करेंगे आपके हाथों की क्रियाएं बदलती जाएंगी। जो हाथ आंखें हैं गलत काम कर रहे हैं, हाथ हैं आपकी कर्मेंद्रिया रूपांतरित होती जाएगी, ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, आप अनुभव करेंगे। तो स्वीकार करना है अपने तन को। अगर कभी कोई बीमारी आए शरीर में, रिजेक्ट नहीं कीजिए। हाथ को कुछ बीमारी आई, पैर को आई, कोई भी बीमारी आई, रिजेक्ट नहीं कीजिए। जब रिजेक्ट करते हैं तो आप उस बीमारी को बढ़ाते हैं। बीमारी क्यों आई है, हमने ही ऐसा कोई कर्म किया है, कर्म मना ऊर्जा छोड़ी है, जो जब वापस आई है तो उसने बीमारी का रूप ले लिया। तो अभी क्या किया हमने हमारे ही कर्मों को एक्सेप्ट किया कि मैंने ही कुछ गलत किया था जिसका फल मुझे बीमारी के रूप में आया है। उससे क्या होगा, बीमारी माना एक निगेटिव एनर्जी, उस बीमारी की जगह क्रिएट हो गई, हाथ पाव शरीर कहा भी, वो निगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई। जब आप स्वीकार करते हैं तो आप आत्मा से उस ऑर्गन को पॉजिटिव ऊर्जा जाती है और जो बीमारी है वो घटना शुरू हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, जो भी है जैसी भी है, जितने दिन रहना है रहेगी, जो तकलीफ देनी है उसकी मर्जी। आप जब रेडी होते हैं तो तकलीफ कभी नहीं होती, रेडी नहीं होते तो तकलीफ जरूर होती है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट रेडी रहता है कि अभी मुझे सुई चुभने वाली, लेकिन अगर रेडी नहीं होता और अचानक से कुछ चुभ जाता है तो कितना दर्द महसूस होता है। देखिए दोनों एक ही चीज है, चुभना चुभना ही है, लेकिन समझ अलग थी। उसने स्वीकार किया कि ये चुभने वाला है तो दर्द खत्म हो गया, एक दो मिनट में, पांच दस मिनट में, आधे घंटे में खत्म हो गए। लेकिन इसमें स्वीकार नहीं किया तो एक पिन ही चुभी लेकिन उसका दर्द दो दिन तक लगा रहा, दो दिन तक दवाई ये लगाए वो लगाए वो लगाए। समझ, इसलिए स्वीकार करने में ही सुख है। तो हम क्या करेंगे, तन को स्वीकार करेंगे। अब करके देखिए होता क्या है, शरीर अपने आप ठीक होगा, आपका शरीर आपको सहयोग देगा। अगर आपका शरीर नहीं चल पा रहा, पैर नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहे, तो आप उससे बात कीजिए पैरों से हाथों से कि किसी जन्म में मैंने आपसे ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसके कारण आपको भी दुख मिला है और मुझे भी दुख मिला, मुझ आत्मा को और आप ऑर्गन को भी। ऑर्गन के अंदर सारे सेल्स है, हमें दुख हो रहा है माना उस ऑर्गन को हो रहा है माना क्या, ऑर्गन के अंदर जितने भी पेशियां हैं वो सारी तड़प रही है दुख में। तो हमने ऐसे कुछ कर्म किए उनसे, उन ऑर्गन से, कि इतनी सारी सेल्स को हम दुख देने के निमित्त बने। सोचिए हमारे शरीर, तो उनको बोलिए सॉरी कि हमने कुछ कर्म किया होगा जिसके कारण आपको दुख मिला है, तो उसके लिए हम सच्चे दिल से माफी चाहते हैं कि आपको भी दुख मिल रहा है। किससे माफी मांग रहे हैं, ऑर्गन से, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी जाए। आप महसूस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो पैर आपको सहयोग नहीं दे रहे थे सहयोग देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें शक्ति मिल गई आपसे चलाने की। आंखों का प्रॉब्लम, दिमाग का प्रॉब्लम, पूरे शरीर का कोई भी प्रॉब्लम, संस्कार हो या प्रॉब्लम हो, जो भी हो, आप उनसे बात करके देखिए क्या हो जाता है। वास्तविक रूप से शरीर तो पांच तत्वों से बना है, किसी को कुछ रियल फीलिंग नहीं है किसी के अंदर। टंग को अगर काट के बाहर रखा जाए और उसके ऊपर कुछ रखा जाए वो नहीं बता सकती इसकी टेस्ट क्या है। जो टंग के ऊपर रखा है वो अगर हाथ के ऊपर रखा तो हाथ नहीं बता सकता कि टेस्ट क्या है। कहना यही है, सही है गलत है, अच्छा है बुरा है, हम डिसाइड करते हैं हम। तो जिस कर्मेंद्रिय से जो कर्म हो रहा है वो हम कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो उन कर्मेंद्रियों को और खुद को स्वीकार कर लीजिए। फिर देखें आपकी कर्मेंद्रिया न सिर्फ शीतल होंगी बल्कि आप अनुभव करेंगे कि बदलती जा रही, ठीक होती जा रही, आपको सहयोग देती जा रही। प्रकृति हमेशा सहयोग ही देती है, प्रकृति हमेशा सहयोग देती है। किसी के घर में कुत्ता है किसी का, अब उसे 10 दिन खाना नहीं दो कुछ नहीं बोलेगा, 11वें दिन अब खाना दो या ना दो वो आपके पास उतने ही प्यार से रहेगा जितने प्यार से खाना देने के बाद रहता था, उसका प्यार नहीं बदलता। आम को, एप्पल को अब पानी दो या ना दो, वो उसके टेस्ट चेंज नहीं करेगा। आपने पानी नहीं दिया इसलिए आपको टेस्ट अलग देगा, किसी ने पानी दिया उसको टेस्ट अलग देगा, ये नहीं हो सकता। प्रकृति न्यूट्रल है, इसका भाव यही है, प्रकृति न्यूट्रल है। लेने वाले के ऊपर है हम क्या ले रहे हैं, करने वाले के ऊपर है हम प्रकृति द्वारा कौन से कार्य करा रहे हैं। तो शरीर को स्वीकार कीजिए, शरीर रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। मन को स्वीकार कीजिए। बहुत बार हम बोलते हैं हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं, इनके बारे में निगेटिव, उनके बारे में निगेटिव, लेकिन उस मन को कहां पता था कि कौन सा विचार निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, कहां पता था? जब बच्चा बच्चा होता है छोटा, बच्चे को अच्छा बुरा कुछ पता नहीं होता, हम जो सिखाते हैं करता जाता है। अब अनुभव करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी बच्चे को अगर बचपन से सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया कि राम राम बोलना मना गाली देना है, और कोई गाली सिखाई मना किसी देवता का नाम बोलना है या गुड मॉर्निंग बोलना है, शुभ बोलना है, अब देखिए उसकी धारणा क्या बन जाती है। हम जो पालना देते हैं, जो तैयारी करते हैं, वही सब बनता है। तो मन भी हमारा बच्चा है, मन नहीं डिसाइड करता क्या अच्छा है। जैसे टंग ने सिर्फ टेस्ट दिलाई, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, टंग ने बताया, वैसे मन संकल्प चलाता है, अच्छा है या बुरा है हम डिसाइड करते हैं, मन नहीं डिसाइड करता। मन डिसाइड नहीं करता। गाली अशुभ है, राम राम कहना शुभ है, ये किसने डिसाइड किया है? हमने डिसाइड किया। इसलिए जिनकी धारणाएं हैं कि राम राम बोलना अशुभ है, उनको अब राम राम बोलेंगे तो दुख लगेगा, और गाली देना शुभ है, या जिनकी धारणाएं हैं उनको गाली देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खुश होंगे। धारणाएं, तो मैं धारणा बदलने जा रहे खुद की। मन को स्वीकार कीजिए, आपके कुछ समय के लिए मन में आपके जो विचार चल रहे हैं, मन को मत बोलिए, एक भी संकल्प नहीं उठाइए कि मेरे मन में गलत विचार चल रहे, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मन अच्छा चल रहा है, मन अच्छा चल रहा है। अब अनुभव करेंगे अच्छा अच्छा करते करते मन कब अच्छा विचार चलाना शुरू करेगा आपको पता नहीं चलेगा। मन को आप जितना सिखाएंगे ये गलत है ये सही है, वो उतना पकड़ के रखेगा ये गलत है ये सही है। जब सामने आएगा तो मन पहले ही बोलेगा ये गलत है ये सही है। अपने मन को बोल ही दिया अच्छा है, अच्छा अच्छा, बाबा कहते ना अच्छा अच्छा करते करते अच्छा बन ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। तो सही गलत में नहीं जाना है, अच्छा करना है, मन को स्वीकार करना है। कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि मन की वास्तविक अवस्था है शांति। मन जब शरीर में आता है, कर्मों में फंस जाता है तो अशांत हो जाता है। मना हमने क्या किया, हमारे कर्मों के कारण मन को भी अशांत कर दिया। देखिए जिम्मेवार हम हैं, हमारा मन नहीं, हमारे कर्मों के कारण हमने मन को अशांत कर दिया। भला शांति में था, अच्छा खासा चल रहा था, खुश था, उसको भी उदास बना दिया हमारे कर्मों के कारण। हमने डिसाइड किया गलत और सही, सत्युग और त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन दोनों में क्या फर्क है? सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग, सत्युग त्रेता में कुछ भी सही गलत नहीं होता वहां पर, द्वापर और कलियुग में सही गलत होता है। जहां सही गलत है वहां कंपैरिजन है, तुलना है। कंपैरिजन के कारण दुख मिलता है, क्योंकि कंपैरिजन में क्या हो जाता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। जब हम अपनी अच्छाई किसी को दिखाना चाहते हैं, उसका मतलब हम दूसरों की बुराई निकाल रहे हैं, ये सिद्ध हो जाता है। जो इंसान खुद की अच्छाई दूसरों को दिखाना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है, उस इंसान को सब में बुराई दिख रही है, इसलिए वो खुद की अच्छाई दिखा रहा है, ये सिद्ध हो रहा है। अच्छे अच्छे ही है, हम उनको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम हमारा ज्ञान आपको दिखा रहे, ये डिस्कशन चल रहा है। अगर इस कुर्सी पर बैठकर हम खुद को ज्ञानी समझेंगे, ये हमारी महामूर्खता होगी, क्योंकि जब हम हमको ज्ञानी समझेंगे तो सामने वालों को अज्ञानी समझेंगे, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए जब हम हमारी अच्छाई दिखाते हैं किसी को, माना हमें दूसरों के अंदर बुराई दिख रही, ये सिद्ध हो रहा है, कोई कितना भी कहे। जब हम हमारी इंटेलिजेंस दिखा रहे, माना हम समझ रहे हैं बाकी सब बुद्ध है, ये सिद्ध हो रहा। तो हर बात को स्वीकार करना है, मन को स्वीकार कर लीजिए। देखिए मन अमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा आपके जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में, जिस चीज को आपने स्वीकार किया, किसी जानवर को भी आप कभी पुकारिए बुलाइए, कितना खुशी से आता है वो आपके पास, प्यार से आप बुलाते, क्या कि आपने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद हर किसी के अंदर आनंद ही उत्पन्न होता है। तो हमारे मन को स्वीकार कीजिए, कैसे आनंद उत्पन्न होगा देखिए, आपका मन कितना आनंदित होगा आप अनुभव करेंगे। मन जैसे चल रहा है, यह आदत हमने लगाई है, हमने लगाई है, हम कहेंगे कि हमने उसके ऊपर अत्याचार किया है, जबरदस्ती की है, उसको गलत सिखाया है। बच्चे बड़े होने के बाद अगर माँ बाप कहें कि तेरे संस्कार क्या है, तो ये थोड़ा पागलपन होगा, क्योंकि संस्कार तो माँ बाप ही देते हैं। बड़ा होने के बाद हम पूछ रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, तो हम खुद को पूछे कि हमने क्या सिखाया है। पहले बच्चा जो गलती कर रहा है चेक कीजिए, कहीं आपने तो नहीं सिखाई है। अगर पास्ट लाइफ से लेके आया है तो अलग बात है, वो उसके संस्कार है, लेकिन अगर हमने सिखाकर हम बोल रहे हैं उसको कि तू ये क्या कर रहा है, खुद को बोल रहे, गलत फहमी, मतलब खुद को करेक्ट नहीं कर रहे, हर बार दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये गलत है वो गलत है। तो हमें चेक करना है कि हमने क्या सही देखा, हमने क्या सही देखा हर किसी में। जब हम सही देखते जाते हैं तो हम भी सही होते जाते हैं, अपने आप ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मन को स्वीकार करेंगे, जितना मन को स्वीकार करेंगे अब अनुभव करेंगे, आपका मन शांत होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, आपके अंदर एक विचारधारा, बहुत शुद्ध विचारधारा शुरू हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि आपने रूट को ही अच्छा बना लिया, स्वीकार कर लिया। कभी किसी बच्चे को हम, हमारे बच्चे को स्वीकार करते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम ठीक से करेंगे, या किसी भी भाई को, किसी को भी हम स्वीकार कर लेते आत्मा को, तो हम अनुभव करते हैं कि उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है, राइट है ना, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो हम खुद के लिए उमंग उत्साह बढ़ाएंगे, खुद के लिए, क्योंकि दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना और खुद को दुखी करना, ये कौन सा ज्ञान है। राजयोग का ज्ञान, माना सबसे बड़ी बात है
खुद को सुखी और संपन्न बनाना। जब खुद को सुखी और संपन्न बनाएंगे तभी विश्व को सुखी बना पाएंगे। तो हमारे मन को स्वीकार करना है, तीसरी धारणा। चौथी धारणा, आपके पास जो भी धन है कर्म अनुसार मिला हुआ, उसे स्वीकार कर लीजिए, रिजेक्ट नहीं कीजिए। आपके कर्मों अनुसार ही आपको मिला है, फिर वो 10 हो, 10 रुपए या 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, वो आपके कर्मों अनुसार मिले हैं, उसको स्वीकार कीजिए। जो कुछ मिला है मेरे कर्मों अनुसार मिला है, उससे क्या होगा, आपने जो गलतियां की जिसके कारण धन नहीं आ रहा है आपके जीवन में, उन गलतियों को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद धन को भी एक्सेप्ट किया, धन को एक्सेप्ट करने के बाद आपकी ऊर्जा यूनिवर्स तक पहुंच जाती है और जो धन आपके पास रुका हुआ है आने के लिए वो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने जो है उसको स्वीकार किया। आवाज आ रही
है?
स्वीकार कर लिया। अब अनुभव करेंगे, जिस धन को आप स्वीकार करेंगे, जो कुछ है मेरे पास परमात्मा का दिया हुआ है, बाबा का दिया हुआ है, वो मेरे कर्मों अनुसार, मेरे यथाशक्ति अनुसार, विश्व कल्याण की सेवा अनुसार उसने मुझे दिया है। अब अनुभव करेंगे, बढ़ोत्तरी होती जाएगी उसमें। न सिर्फ बढ़ोत्तरी होगी बल्कि आपका एक एक रुपया अच्छे ही कर्मों में जाएगा। जब आप धन को, हाँ, सदुपयोग होगा, धन को स्वीकार करेंगे, आपके घर का एक भी सदस्य उस धन का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। करके देखिए आप, जब आप धन को स्वीकार करेंगे, आपका धन, आपके कर्मानुसार मिला हुआ धन आपने स्वीकार किया, जो कुछ है बहुत अच्छा है, दुनिया से तो बहुत अच्छा मिला है, 10 रुपए हो या 10 करोड़ हो, दुनिया से बहुत अच्छा मिला है, स्वीकार कीजिए, धन बढ़ता जाएगा। न सिर्फ बढ़ेगा, न सिर्फ गलत कर्म रुकेंगे उस धन के, बल्कि एक एक रुपए से आपको सुख मिलेगा, आपके हर एक पाई पाई से आपको सुख मिलेगा। अनुभव करें, उस धन से 10 रुपए की सब्जी भी लाएंगे, 100 रुपए की कुछ अच्छी चीजें भी लाएंगे, तो उसमें आप आनंद पाएंगे, खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि आपने उसको स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद खुशी ही मिलती है, और रिजेक्ट करने के बाद 10 अरब भी हो, खरब भी हो, दुख ही मिलेगा, क्योंकि रिजेक्ट है, उस धन में अच्छी ऊर्जा नहीं है, इसलिए वह धन अच्छे कामों के लिए नहीं लग सकता। लग भी गया तो हमें वो तृप्ति, समाधान, संतुष्टि नहीं दे सकता। इसलिए क्या करना है, धन को भी स्वीकार करना है। देखिए क्या हो जाता है, एक एक धन सफल हो जाएगा और बहुत खुश रहेंगे। उसके बाद आती है बात परिवार की, सबसे बड़ी बात है। इन सारी बातों को, खुद को, खुद के तन मन धन को तो हम कुछ मात्रा तक स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार में आजकल रिजेक्शन बहुत हो रहा, बहुत हो रहा, टकराव बहुत बढ़ गया है, एक दूसरे में कंपैरिजन, कमी कमजोरियां बहुत निकाली जा रही परिवार में। देखिए, हमें जो परिवार मिला है, जो भी मिला है, ऊंच विचारों वाला या ऑपोजिट डायरेक्शन, नीच विचारों वाला, हम कहेंगे जो भी है,
हमें जो भी परिवार मिला है, ऊंच विचारों वाला या नीच विचारों वाला, विचार कभी नीच और ऊंच नहीं होते, हम उन्हें ठहराते हैं कौन से विचार ऊंच है या नीच है। समाज के अनुसार हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो गलत सोचते हैं, उनसे गलत कार्य हो रहे हैं, कर नहीं रहे, कोई गलत काम नहीं करता, हो रहे स्वभाव संस्कार अनुसार, पिछले जन्म के कर्मों अनुसार कर रहे, उसे स्वीकार कीजिए। कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक समान कभी नहीं होती। इसका मतलब छोटी है तो कोई काम की नहीं, और बड़ी है जो भी बड़े हैं बहुत काम के हैं, ये सिद्ध नहीं होता। कभी छोटे भी बड़ों से ज्यादा काम करते हैं। हर एक का अपना रोल है, अपना पार्ट है, हर एक की अपनी बुद्धि है, हर एक का अपने कर्म है, भाग्य है। तो सबको स्वीकार कीजिए। ये अपेक्षा नहीं रखिए परिवार में कि रोज आपको हर कोई अच्छा बोलेगा, अपेक्षा नहीं रखिए। हर किसी की मनस्थिति है, हर कोई अपने मनस्थिति में चल रहा है। जब हम अपेक्षा रखते हैं तो हमारी उपेक्षा हो जाती है, कुछ नहीं होता। अपेक्षा नहीं रखनी है परिवार के किसी भी सदस्य से। ताकत देनी है हर किसी को। ताकत कैसे देंगे? उनके प्रति अच्छे विचार करके, क्योंकि जैसे विचार उनके प्रति करेंगे वैसी ऊर्जा उनको मिलेगी, ताकत मिलेगी। कोई आत्मा है, पिछले जन्म में उनका पार्ट था गुनहगारी, क्रिमिनल, कुछ अपराध करने का, होगा पार्ट कहते हैं। किसी का पार्ट था दूसरों को दुख देने का। तो इस जन्म में आने के बाद संस्कार तो कैरीफॉर्ड हुए, हमारे पास ही क्यों आए हैं? सबसे बड़ी बात, वही आत्मा है, कुछ हमने ही किया है ना, इसलिए दुख देने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। अगर हमने अच्छा किया होता उनके साथ तो थोड़ी हमें दुख देने के लिए कोई आ जाएगा। हमने ही किसी जन्म में उनके साथ ऐसा कुछ किया है, उसके कारण वह आत्मा हमारे घर में आए। हमने ही ऐसा कुछ किया है कि ऐसी कोई अच्छी विचारों की, अच्छे कर्मों की, अच्छे बोल वाली आत्माएं हमारे घर में आए। सारा कुछ हमारा ही किया कराया कर्म है। तो जिस दिन आप अपने आप को स्वीकार करते हैं कि मेरे परिवार का यह सदस्य जो मुझे निमित्त बना है दुख देने के लिए, वह दुख नहीं दे रहा है, जो मैंने उसको दिए थे वो लौटा रहा है, उनके प्रति जो आपके मन में निगेटिविटी है खत्म हो जाए। और अनुभव करेंगे निगेटिविटी खत्म होने के कारण रिश्ता ठीक होता जाएगा। जब तक आप किसी को अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, तब तक आपको दुख मिलेगा, क्योंकि जो आपने उनको दिया था वो लौटाने के लिए ही आपके घर में आए, फिर अच्छा हो या बुरा हो। इस दुनिया में सिर्फ लेन देन का ही काम चलता है और कुछ नहीं होता, लेन देन का ही। परमात्मा आके ही सिर्फ दे के चला जाता, लेता कुछ नहीं, सिर्फ दे के चला जाता है। बाकी सारी दुनिया लेन देन में चलती है, लिया है तो देना है, दिया है तो लेना है। तो कहना यही है, स्वीकार कर लीजिए, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बच्चा, किसी के माँ बाप, किसी के और संबंधी उनसे गलत व्यवहार करते होंगे। आपको जैसे व्यवहार करना है वह आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम उस समय एक संकल्प कीजिए कि मैंने ये शायद से कुछ किया होगा जिसके कारण ये मुझे मिल रहा है। उनका व्यवहार शुद्ध हो जाए, अपने आप शुद्ध हो जाए। जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे परिवार को, परिवार के सदस्यों को, परिवार ठीक होता जाएगा, अपने आप ठीक होता जाएगा। न सिर्फ परिवार ठीक होगा, खुशहाल हो जाएगा, सुखी होगा, और सारा परिवार खुशी में ऐसे चलेगा कि आपके आसपास वाले पूछेंगे कि काश हमारा भी इनके जैसा परिवार होता। आसपास वाले पूछेंगे, आज हम बोलते हैं कि काश उनके जैसा हमारा घर होता, लेकिन उनके घर की बातें अभी तक हमने नहीं देखी है। जो दिख रहा है वो अलग है, जो नहीं दिख रहा है वो अलग है। आपको जो मिला है ना वो सबसे बेस्ट मिला है, हमेशा याद रखिए। आपकी बातों का, आपकी चीजों का, आपके परिवार का किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिला है दुनिया का। तो परिवार को स्वीकार करना है। सारा परिवार अगर ज्ञान में है, आज कोई परिवार पूरा बैठा है, तो समझ लीजिए कुछ दिन के लिए यह धारणा कीजिए, किसी से गलती हो जाती है समझा दीजिए, प्यार से माफ कीजिए। गलतियां इंसान कहां तक करता रहे? जब किसी से गलती होती है उसको उस समय रियलाइज होता है कि मुझसे गलत हो रहा है, हम उसको समझा नहीं देते हैं वो गलत कर रहा है, ये गलत बात है। अच्छा क्या करना है वह समझाने दीजिए, वो गलत क्या कर रहा है ये समझाने नहीं दीजिए। अगर आपसे कुछ गलत होता है और आपको कोई समझा नहीं देता है, अलग शब्द है फिर भी कह रहे हैं कि अकल नहीं है, समझ में नहीं आता, क्या कर रहे हो, ज्ञान नहीं है, कैसे लगता है। गलती होती है उनको बता दीजिए, ऐसे नहीं, इस प्रकार करते तो ठीक हो जाता है। समझाने के कहने की मेथड होती है, एक बात होती है, उस बात से इस तरीके से समझाते हैं, ट्राई करके देखिए क्या होता है, परिवार खुशहाल हो जाएगा। हम फ्री में एडवाइस देने के लिए दुनिया को दौड़ रहे हैं, फ्री में एडवाइस, जान पहचान वाला भी नहीं है और बाजू में खड़ा है, और अगर ऐसे बोले कि नेटवर्क कौन सा अच्छा है पता नहीं, कौन सा सिम लेना चाहिए, तुरंत बोल देते हैं ये फलाना सिम ले लो, इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, 4G चलता है, हर जगह अरेंज मिलती है, रोमिंग फ्री है। फ्री में एडवाइस, कभी अपने परिवार को भी ऐसी फ्री में एडवाइस दीजिए, एडवाइस दे देते हैं, बच्चे भी कहते हैं। एक दो दिन पहले कहानी सुनी, मतलब एक सिस्टर ने सुनाया कि एक छोटा बच्चा था, ट्यूशन में जाता था, वो हमेशा बोलता था वेद में 8, 2×2 8। उसके दादाजी उसको समझाते थे 8 नहीं 4, दादाजी को बोलता था ट्यूशन मैं जाता हूँ या आप जाते हो, बच्चों के समझाने, दादाजी हंसते थे। समझ छोटी है कोई बात नहीं, आपने जो निकाला बच्चे समझाने देते हैं, मतलब आज हर कोई दे रहा है, यही समझ अगर हम खुद को देते हैं, हमारे परिवार को देते हैं, हमारे मन को देते हैं, तन को धन को देते हैं, जीवन खुशहाल हो जाएगा। फ्री में एडवाइस, खुद के ही काउंसलर बनिए। जब दूसरे का बच्चा ड्रामानुसार पार्ट अनुसार बिगड़ जाता है, कोई बिगड़ा हुआ नहीं था होता, ड्रामा अनुसार बिगड़ जाता है, हमारे पास कोई कहने को आता है कि मेरे बच्चे ना ऐसे ऐसे करते हैं, क्या करना है पता नहीं, आप इतनी अच्छी एडवाइस देंगे वो इम्प्लीमेंट करने के बाद उनका बच्चा डेफिनेटली ठीक हो जाता है। लेकिन वही प्रॉब्लम जब हमारे घर में होता है तो हम दूसरों को पूछने जाते हैं कि भाई क्या करें, ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि खुद को नहीं संभाला, खुद के परिवार को नहीं संभाला, दुनिया के बारे में सोचते रहे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि कोई कोई माता पिता है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाहर के लोग हमें कहते हैं आप में ये टैलेंट है, कभी मेरे माँ बाप ने नहीं कहा कि बच्चे आप इतने होशियार हो, इतने अच्छे हो, आप में ये टैलेंट है, आप ये कर सकते हो, मतलब उनकी आंखों में आंसू होते हैं कहने के वक्त, कि दूसरे लोग हमें कहते हैं कि आप ये करो बहुत आगे बढ़ोगे। यही उम्मीद हम हमारे माँ बाप से रखते हैं कि भले हम गलत रास्ते से भी जाए लेकिन हमारे माँ बाप कहे किस रास्ते से जाना है, एक बार बोले तो सही, गलत नहीं जाएंगे, लेकिन हम माँ बाप से राह पाना चाहते हैं,
बुराई मत
देखो हमारे अंदर क्या है। तो कहना यही है, परिवार के हर सदस्य को स्वीकार करना है। देखिए, रिजेक्ट करने का अधिकार उसी को है, रिजेक्ट करने का अधिकार उसी को है जिसके अंदर कोई कमी खामियां नहीं है। जब कभी भी आप किसी को भी रिजेक्ट करेंगे, बस एक संकल्प याद रखिए कि मैं जिसको रिजेक्ट कर रही हूं उसको रिजेक्ट करने का अधिकार मेरे अंदर है क्या, मैं संपन्न हूं क्या, मैं संपूर्ण बनी हूं क्या गुणों से, कर्म बोल और संकल्प से। अपने आप को याद दिलाइए, फिर आप अनुभव करेंगे कि नहीं, मेरे पास वो अधिकार नहीं है। जिसके पास अधिकार है, हमारा पिता ऊपर बैठा है, परमात्मा बाबा, वो कभी अपने बच्चों को रिजेक्ट नहीं करता। दुनिया भर से 2500 साल में हमने इतने अतरंगी कारनामे किए हैं जिसका इतिहास निकाले तो हम भी सोचते रहेंगे, फिर भी उसने स्वीकार किया है, फिर भी उसने स्वीकार किया है तो हम किसी और को कैसे रिजेक्ट कर सकते। जिसको परमात्मा स्वीकार कर रहा है उसको रिजेक्ट करने की ताकत किसी भी इंसान में, किसी भी आत्मा में नहीं है। तो परिवार को स्वीकार कीजिए जैसे हैं, आपके हैं। बस सुबह में उठते समय एक संकल्प कीजिए कि जो भी मेरा परिवार है, दुनिया का सबसे बेस्ट परिवार है। दुनिया बेस्ट ही है, दुनिया ही एक परिवार है, लेकिन यह भी जो परिवार के सदस्य है उनके लिए एक संकल्प उठा रहे कि सबसे बहुत अच्छे है। देखिए क्या हो जाता है, आपका एक संकल्प सुबह उठते ही किया, सारे परिवार की धारणाएं, विचारधाराएं, कर्म बोल बदल देगा, क्योंकि आपने स्वीकार किया। आप आपके बेडरूम में हैं, हर कोई अपने अपने बेडरूम में है, लेकिन जिस समय आपने संकल्प किया सबको एनर्जी पहुंच गई कि मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, मेरे माँ बाप, बाकी रिश्तेदार सभी अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अब अनुभव करेंगे उनका व्यवहार बदलता जा रहा है। और अगर उनसे कोई गलतियां हो रही है, वो कहीं असफल हो रहे हैं, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है किसी भी क्षेत्र में, आपके एक्सेप्टेंस से उनको इतनी ताकत मिलेगी कि सफलता उनके आगे पीछे भागेगी, आपके एक्सेप्टेंस। देखिए, जब कोई रेस में दौड़ता है उसमें दौड़ने की ताकत नहीं है, पब्लिक उसे होप दिलाती है, उसके लिए तालियां बजाती है, तो सारी ताकत उसके अंदर पैदा होती है, ना दौड़ने वाला भी दौड़ने लगता है। तो कम से कम दुनिया छोड़ दीजिए, हम अपने परिवार को तो दौड़ा सकते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है परिवार को चलाना। तो इस प्रकार परिवार को स्वीकार करेंगे हर हालत में। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तब तक बहन जी सारी धारणाएं आपके अंदर पक्की कराएंगी, होप सो। एक साथ नहीं होंगे फिर भी प्रयास करेंगे, फिर आप जहां रहते हैं, जो स्थान है उसे स्वीकार कीजिए। आप जहां भी हो आपके कर्मानुसार, दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है आपके लिए, आपके लिए। ऐसे में ही कि बंबई में है तो दिल्ली अच्छी है, दिल्ली में है तो बॉम्बे, कलकत्ता, राजस्थान, जो भी है, हैदराबाद या लंदन अच्छा है, भारत में है तो अमेरिका अच्छा है नहीं, अमेरिका में है तो भारत अच्छा है नहीं, हर चीज हर स्थान अच्छा है, बस उसे स्वीकार कीजिए। अब जहां है ही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, हर कंट्री बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई शक नहीं। फिर भी देखिए, भारत अच्छा है लेकिन इस भारत को अच्छे से बुरा बनाने वाले भी भारतवासी ही हैं। सारे विदेश, दुनिया के सारे देश बोलते हैं भारत सबसे अच्छा है, और हम भारतवासी ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, विदेश में भाग रहे हैं।
यही तो स्वीकार करना है कि हर भारतवासी का ही हमारा भारत
अच्छा है।
अच्छा,
बराबर है। तो कहना यही है, हर स्थान सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो आप जहां भी रहते हैं उस स्थान को स्वीकार कीजिए। जिस घर में रहते हैं पहले उस वास्तु को स्वीकार कीजिए। वास्तु को देवता कहा जाता है, वास्तु देवता कहते हैं ना वास्तु शास्त्र में। मानो वास्तु देवता क्या बोलती रहती है, तथास्तु। वास्तु देवता हमेशा तथास्तु बोलते रहते हैं, माना इस वास्तु में रहने वाले हर किसी के संकल्प पूरे हो जाए, तथास्तु। आपने बोला ये अच्छा नहीं, तथास्तु। आपने बोला सब कुछ अच्छा चल रहा है, तथास्तु। आपकी वास्तु ही आपको ऐसी एनर्जी देगी कि आप सब उस वास्तु में खुशहाली से रहेंगे अपने आप। बस उसे स्वीकार कीजिए, उस वास्तु को, उस घर को। उस घर की किसी भी चीज में कमी नहीं निकाली, फिर झोपड़ी हो या बहुत बड़ा महल हो, वो आपका है, स्वीकार करना है। झोपड़ी को अगर आप रिजेक्ट करेंगे और सामने वाले महल की तारीफ करेंगे तो एक दिन वो झोपड़ी भी टूट जाएगी, क्योंकि आप जिसे स्वीकार नहीं करते वो चीज आपके पास कभी नहीं रहती, कभी नहीं रहती। आपको अगर किसी ने रिजेक्ट किया, कुछ बोल दिया, आप ऐसे वैसे वैसे हो, दोबारा आप उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, वो कुछ भी दे दे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। तो ये नियम है, जिसको रिजेक्ट करेंगे वो चीज दूर चली जाती है। तो झोपड़ी भी आपकी है, महल भी आपका है। उस महल में या झोपड़ी में रहने वाली हर चीज, बर्तन से लेकर फर्श से लेकर छत तक, हर चीज आपकी है। कपड़ों से लेकर हर चीज आपको मिली है। हर चीज को स्वीकार कीजिए, हर चीज आपको सुख देगी। कोई बर्तन है, टूटा फूटा है, कोई बात नहीं, अगर आप चला सकते तो चला लीजिए, नहीं चला सकते पैसे हैं नया खरीद लीजिए। पर ये नहीं कहीं कि ये बर्तन ठीक नहीं है, ये वस्तु ठीक नहीं है, ये नहीं कहीं। ये जब हम कहते हैं तो एक बर्तन के साथ सारे बर्तनों को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर यहां हम किसी एक आत्मा के ऊपर चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो सबकी धारणा क्या होगी, भाई साहब ऐसे ही है। मतलब एक आत्मा के साथ हमने व्यवहार किया तो एक के साथ आपने देखा तो सब भी हमसे टूट गए। तो एक बर्तन के साथ आपने रिजेक्शन का व्यवहार किया, सारे बर्तन आपको रिजेक्शन की एनर्जी दिलाएंगे। फर्श टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, या तो रिपेयर करवा लीजिए, जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, दो में से रिपेयर या एक्सेप्ट। इसलिए इस दुनिया में दो ही काम हो सकते हैं, या तो एक्सेप्ट या रिवर्क। रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्शन का काम कभी नहीं होता। तो जो फर्श है कैसे भी है आपके हैं, कपड़े हैं आपकी वस्तुएं हैं आपकी है, एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर देखिए सुख कैसे मिलता है, सुख ही सुख मिलेगा। जितना अगर हमारे पास मोबाइल है, उस समय कोई बंदा आया, कोई दोस्त आए, कोई मित्र संबंधी या जो भी आए, उनके पास कोई अच्छे ब्रांड वाला है, अच्छी कंपनी का है, तो उस समय अगर हम हमारी मोबाइल में कमी निकालते हैं तो समझ लेना कुछ दिन के बाद आपका मोबाइल बंद पड़ने वाला, इतना पक्का है। क्योंकि उसका अच्छा देख के अपने आपका बुरा बना दिया, उसका उसकी जगह पर है, आपका आपकी जगह पर है। उसका अच्छा है इसका मतलब आपका बुरा है ये सिद्ध नहीं होता। आपका भले 1000 रुपए का मोबाइल है, किसी का 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 वाला 1,00,000 की जगह 1,000 वाला 1,000 की जगह दोनों अच्छे हैं। गलत कुछ काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। तो कहना यही है हर चीज को स्वीकार करना है, घर सहित वास्तु सहित वास्तु में रहने वाली हर चीज को स्वीकार करना है। घर में जब कचरा होता है, घर का कचरा जब हम निकालते हैं तो कचरे को भी प्यार से निकालिए, वो प्यार से आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी बाहर लेके जाएगा। लेकिन चिल्ला चिल्ला के इरिटेड होके निकालेंगे तो आप कचरा तो निकाल रहे हैं लेकिन जब इरिटेड हो रहे तो दूसरा कचरा वहां रख रहे हैं निगेटिव एनर्जी का। कचरा निकाल रहे हैं लेकिन इरिटेशन में जो एनर्जी छोड़ रहे हैं वो वहां पर रह रही है। तो हमने स्थूल कचरा तो निकाला लेकिन सूक्ष्म कचरा उससे भी ज्यादा किया, आप सोच सकते हैं। इसलिए हर कार्य प्यार से। तो देखिए क्या होता है, कैसे सुख मिलता है। आपके घर के आपके जूते भी हो, हर चीज हो, आपको जैसी रखनी है प्यार से रखिए, प्यार से जहां भी रखनी है प्यार से। रिजेक्शन कुछ नहीं, नहीं जगह घर में कोई बात नहीं, जूते भी यहाँ है यहाँ ही खाना खाना पड़ रहा है क्योंकि जगह कम है, कोई बात नहीं। लेकिन स्वीकारना है, एक्सेप्टेंस है, कोई बात नहीं। जितना एक्सेप्टेंस बढ़ेगा जीवन उतनी सुखी हो, हर चीज आपको सुख देगी। तो वास्तु में रहते वक्त, घर में रहते वक्त क्या करना है, एक्सेप्टेंस की धारणा करनी है। घर को गलती से भी कभी नहीं कहिए कि ये घर ही ऐसे ही है, या कभी सफलता ही नहीं मिलती, ये घर में हमेशा अशांति ही रहती है, नहीं बोलिए। अब उस वास्तु को दुख दे रहे हैं, बल वो उसमें जितनी ताकत है वो दे रहा है, उस घर में उस वास्तु में जितनी सुख देने की ताकत है आपको 100% दे रहा है। आप उससे और ज्यादा चाहते हैं लेकिन उसमें वो ताकत नहीं है। हम चाहते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी है, और चाहते किससे हैं कि जिसमें ताकत नहीं है उससे चाहना कर रहे हैं। अभी कोई 90 साल का शरीर से बूढ़ा है, बूढ़ा शरीर से होता है हमेशा 90 साल का, उसको कहेंगे 21 किलोमीटर की मैराथन को रन करो, कैसे करेगा? इतनी अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? परिवार से कभी कभी रखते हैं, बच्चों से 90% आने ही चाहिए। अभी उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो लाएगा। कहते हैं कि घर में इतने पैसे कमा के आने ही चाहिए। हर किसी का इंटेंशन होता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का, सबसे अच्छा करने का इंटेंशन होता है, लेकिन किसी कारणवश उससे नहीं हो पाता, इसका मतलब वो गलत है, उसको रिजेक्ट करें, ये सही धारणा नहीं है। तो बच्चों से तो नहीं है, परिवार से भी तो कभी नहीं रखनी है, घर से भी ऐसी उम्मीद गलती से नहीं रखनी है कि ये घर सुख नहीं दे रहा, नहीं, जो है सबसे अच्छा है। दुनिया के अच्छे घर में मैं रह रही या रह रहा हूं, सबसे अच्छा। अब अनुभव कीजिए, आपको घर सुख देगा, नहीं तो करोड़ों का घर है, बंगलो है, बहुत बड़ा है, महल है, और वहां अगर रिजेक्शन चल रहा है, शांति भी नहीं मिल सकती। सुकून से खाना भी छोड़ दीजिए, शांति के लिए भी किसी और आश्रम में जाना पड़ेगा, दुनिया के किसी और आश्रम में किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। आपका घर आपको सुख शांति देने के लिए परिपूर्ण है, बस आप लेने की एक्टिवेशन में नहीं है, लेने की पात्रता में नहीं है। जब आप लेने की पात्रता में आ जाते हैं, देने वाला इतना देता है आपकी उम्मीद से भी ज्यादा देता है। फिर वो घर हो, परिवार हो, आपका मन हो, आपका तन हो, या आप खुद आप हो, उम्मीद से भी ज्यादा देता है। तो वास्तु को भी हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, कुछ भी हो रिजेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट और एक बात, और एक दो है फिर भी, और एक बात, स्थान। स्थान से हम घर के ऊपर आए, स्थान को कभी भी कंपैरिजन में नहीं लाएंगे। हमें शुरू में बोला कि मुंबई है तो मुंबई से अच्छी दिल्ली है नहीं करना। मुंबई भी अच्छी है, दिल्ली भी अच्छी है, हर कोई अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, हर अपनी अपनी जगह पर अच्छा है। और मुझे जो स्थान मिला है सबसे अच्छा है। आप अनुभव करके देखिए, वह स्थान आपको सुख देना शुरू करेगा। स्थान कैसे सुख देगा, आपकी एक सोच से जो वाइब्रेशंस निकलेंगे आपके गांव में, आपके शहर में फैलेंगे, उस धरनी में भर जाएंगे, उस धरनी में। और न सिर्फ आपको बल्कि वहां रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को उस स्थान सुख देना शुरू करेगा। आपके स्थान पर, आपके प्लेस में कोई अगर सुख साधन नहीं है, आना शुरू हो जाएंगे आपकी एक सोच, ये स्थान सबसे अच्छा है। वहां कम्युनिकेशन नहीं है, आना शुरू हो जाएगा। जो भी बातें आपको वहां कमी महसूस हो रही, अपनी कमी नहीं दिखाई, क्या बोला, अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, तो उससे और अच्छी बातें आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपके एक संकल्प ने न सिर्फ आपका बल्कि उस स्थान में रहने वाले हर व्यक्ति का अच्छा भला किया, आप निमित्त बने। देखिए, किसी के भी जीवन में अच्छा होता है, पता नहीं किसको अच्छा कहां से हो रहा है, चलते चलते कुछ हो रहा है और कुछ अच्छी बात हो गई तो पहले बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ, ये ऐसे ऐसे हो गया, मतलब उसकी जो राहत की सांस निकली, सुकून की सांस निकली, अंदर से जो अच्छाई की वाइब्रेशंस निकली, पहुंचेंगे कहां, जिन्होंने अच्छा किया। आप निमित्त बने, आपकी तरफ पहुंच गए, तो आप विश्व सेवा के निमित्त बने। इस प्रकार से स्थान को एक्सेप्ट करके, स्थान से फिर हम जाएंगे देश और विश्व। हर चीज को एक्सेप्ट करना है, सार यही पकड़ेंगे कि दुनिया की हर बात को हम स्वीकार करते जाएंगे, दुनिया की हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर पदार्थ हमें सुख देता जाएगा, हम सबको, सब हमको सुख देते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे। तो आज के इस क्लास की स्पेशल धारणा क्या है, एक्सेप्टेंस, सबको एक्सेप्ट करना है, प्रकृति से लेकर, तत्वों से लेकर ईश्वर तक एक्सेप्ट करना है। अगर ईश्वर की बात निकली है, बाबा की बात निकली है, परमात्मा की बात निकली है, तो सबको अनुभव है जीवन में हम सबसे ज्यादा रिजेक्ट उसको करते हैं, सबसे ज्यादा रिजेक्ट उसको करते हैं, कहते हैं कि तेरी वजह से मेरे जीवन में यह सब कुछ हो रहा है।
अज्ञान काल,
अज्ञान काल, ज्ञान में भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान में कैसे हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। जब बाबा के सामने आप कोई अर्जी रखते हैं और पूरी नहीं होती,
तब भी नहीं करते,
और पूरी ना होने के बाद आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते, मनो उसको अपने रिजेक्ट किया,
सारा दोष बाबा को
दे दिया। हमने बोला बाबा को कि बाबा ऐसे ऐसे काम है, हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे काम है, पूरा हो जाए तो अच्छा हो, मतलब हमने ही निर्णय लिया काम पूरा हो या ना हो, उसने अभी तक उसकी बात बोली भी नहीं कि वो काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, हमने ही डिसाइड किया। तो फिर उसके बाद बोलते हैं पूरा नहीं हुआ था, बाबा हमने तो आपको बताया था फिर भी कुछ नहीं हुआ, मतलब कंप्लेंट कर रहे हैं ना, बोल नहीं रहे कि आपने पूरा नहीं किया, ये नहीं बोल रहे, लेकिन बोल रहे हमने तो आपको बताया था फिर भी पूरा नहीं हुआ। मैंने क्या किया, उसको रिजेक्ट किया। तो रिजेक्ट नहीं करना, ऊपर बैठकर हंसता होगा वो बच्चे रिजेक्ट कर रहे हैं, किसको रिजेक्ट कर रहे, वो खुद हंसता होगा बैठकर। जब आपका कोई भी कार्य है आप परमात्मा के सामने बाबा के सामने रख रहे हैं, बस कार्य बता दीजिए, रिजल्ट नहीं बता दीजिए, बाबा ऐसे ऐसे कार्य करना है, कैसे करना है, क्या करना है, आप देखो आप जानो। उस समय में अगर वो रिजेक्ट नहीं भी होता कार्य तो हम रिजेक्ट नहीं करते, भलाई होती, एहसास होता है बाबा को तो बताया था नहीं हुआ, माना उसमें कल्याण होगा मेरा, तो कुछ न कुछ कल्याण होगा, ये धारणा अंदर उत्पन्न होती है, तो बस बताना है। बच्चों को हम बताते नहीं, कहते नहीं, हम सिखाते हैं। किसी को भी सिखाना पसंद नहीं है। आपको अगर कोई सिखाए दो चार बातें ऐसे नहीं ऐसे करो, अब नहीं पसंद करोगे, क्योंकि मैं तो हूं, मुझे कहां सिखाने आ गया, मुझे सब पता है भाई, अब बोलेंगे। मतलब जब हम किसी को सिखाते हैं तो अहंकार जागृत होता है, तो सिखाए नहीं, बस उनको बता दीजिए सही क्या है गलत क्या है, कह दीजिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, कहकर जब हम छोड़ देते हैं, जिसको कह दिया है वो अपने आप अच्छा ही पकड़ लेता है। लेकिन जब हम सिखाते हैं इस रास्ते से नहीं जाना है, जब नहीं बताते तो जोर ज्यादा लगाते, इस रास्ते से जाना है, बहुत हल्के से कहें। जोर कहाँ लगाना चाहिए, जहां जाना है उसके ऊपर जोर लगाना चाहिए, हम उल्टा करते ज्यादा, हाँ जोर लगाते हैं। वो कहना यही है, हम किसी को सिखाएंगे नहीं, बस कह देंगे बताएंगे, मर्जी आपकी, कोई किसी के जीवन में बुरा नहीं चाहता। तो इस प्रकार परमात्मा को भी जब बातें बताएंगे बाबा को, तो सामने रखेंगे कि ऐसे ऐसे कार्य है, मर्जी आपकी। जब परमात्मा की मर्जी चलती है तो अर्जियां खत्म हो जाती है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, कार्य अपने आप चलते जाएंगे। और जब तक आपकी मर्जी है ये कार्य होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, समझ लीजिए वो कार्य तो नहीं होगा, बार बार अर्जियां ही डालनी पड़ेगी, अर्जियां खत्म नहीं होगी। तो हमें बस बताना है, हुआ तो भी खुश, नहीं हुआ तो भी खुश। खुश रहकर देखिए, हम उस होने की खुशी से अटैच है, ना होने की खुशी कभी हमने महसूस नहीं किया, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं होता है माना अकल्याण है, होता है माना कल्याण है, ये हमारी धारणा है, ये हमारी धारणा है। लेकिन उसकी धारणा, उसको पता है कि हमारा कल्याण किस में है, ना होने में है या होने में है। बहुत बार जब वो घटना घटित होती है तब हम बोलते हैं अच्छा हुआ टिकट कैंसिल हुआ मैं नहीं गई, उसके बाद बोलते हैं। लेकिन जब टिकट कैंसिल होता है तब बोलते हैं कि इतने हजार का इतने लाख का टिकट कैंसिल हो गया, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं, सारा उसके ऊपर, ट्रैफिक इसी समय लगानी थी, अभी क्या वो ऊपर से आया है ट्रैफिक लगाने के लिए एयरपोर्ट जाने के। अब सोचिए हम उसके ऊपर थॉट देते हैं, लेकिन उसी समय अगर संकल्प करें कि भले लाख गए टिकट के, लेकिन उसमें भी कुछ कल्याण जरूर होगा, क्योंकि वो लाख को व्यस्त नहीं कराएगा इतना मुझे निश्चय है, क्योंकि वो मेरा पिता है, मेरे लाख को ऐसे ही बर्बाद नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं गवाएगा। फिर आप अनुभव करेंगे कि उस लाख जाने से आपको कितने पदम मिले हैं, आप अनुभव करेंगे। तो उसको भी एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस ही जीवन है, रिजेक्शन ही मृत्यु है। जिस समय आप रिजेक्ट करते हैं आप मृत्यु में जा रहे हैं, और जिस समय आप एक्सेप्ट करते हैं और आपके साथ चलने वाले जो भी हैं उनका जीवन आप खुशहाल बना रहे। तो आज के इस क्लास की धारणा एक ही है पक्की, 100% एक्सेप्टेंस। मैं, मेरा तन, मन, धन,
परिवार, प्रकृति, स्थान, वास्तु, समाज, सारा विश्व और फाइनली परमात्मा, सबका एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ही जीवन, और एक्सेप्टेंस हम कहेंगे हमारे हिसाब से एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम है परमात्मा, और रिजेक्शन का दूसरा नाम है नेगेटिविटी, शैतानियत। सार याद रखिए, एक्सेप्टेंस माना परमात्मा, रिजेक्शन माना शैतानियत, और कुछ नहीं। तो आपके हाथ में है क्या करना है। एक्सेप्टेंस सुख ही सुख है, रिजेक्शन दुख ही दुख है। तो आज से हम ये धारणा पक्की करेंगे, हर चीज को एक्सेप्ट करते जाएंगे, और जीवन न सिर्फ हमारा बल्कि सारे विश्व का खुशहाल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।